ওম শান্তি। আজকে খুশনুমা জিন্দগি কি নুমা শাম মে আপ সব ডায়মন্ড কা ডায়মন্ড হল মে স্বাগত হ্যায় স্বাগত হ্যায় স্বাগত হ্যায়। আজ কা হামারা সাবজেক্ট বহুত হি ইম্পর্টেন্ট হ্যায়, লিভিং ইন ফরগিভনেস, ক্ষমাশীল বনকে জীবন বিতানা। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये शब्द हम सुनते आए हैं, क्षमा विरस्य भूषणम, या तो कहेंगे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, आदि आदि बातें हम सुनते आए हैं। तो आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं डायस पर इनवाइट करती हूँ आज के चेयरपर्सन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, डायस पर अपना स्थान लेंगे। राजकीय मुख्य वक्ता राजयोगा टीचर प्राची बहन जी, लिविंग इन फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैप्पी लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ एंड ए सक्सेसफुल लाइफ। आज उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले दो मिनट प्रभु पिता को याद कर चर्चा शुरू करेंगे। दो मिनट परमात्मा की याद में बैठे। गुलदस्ता एवं बेजी से स्वागत के लिए मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारे चेयरपर्सन और डायस पर बैठे हुए का स्वागत करें। गुलदस्ता और बेजी के द्वारा स्वागत की सुहानी वेला है। आइए, आपका प्रभु के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देखा जाए तो कहा जाता है, शब्द से ही खुशी होती है, शब्द से ही पीड़ा, शब्द से ही गम और शब्द से ही मरहम। शब्दों में इतनी ताकत है कि कहावत भी है, टंग हैज नो बोन्स बट इट हैज पावर टू ब्रेक बोन्स। जीभ के पास हड्डियां नहीं है लेकिन उसमें वो शक्ति है कि वो किसी की हड्डियां तुड़वा सकती हैं। आज का हमारा विषय जो है, लिविंग इन फॉरगिवनेस। जब हम किसको क्षमा करते हैं तो क्षमा करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। उन बातों में हम पास होते हैं तभी उस व्यक्ति को हम क्षमा कर पाते हैं। तो इस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच भिलाई से प्राची बेन पधारी हुई हैं। आपका परिचय में संक्षिप्त में देना चाहूंगी। आप वर्तमान में एक प्रेरक वक्ता व मैनेजमेंट ट्रेनर के रूप में ब्रह्मा कुमारी के भिलाई सेवा केंद्र पर सेवारत हैं। बचपन की अल्पायु में ही आपने ईश्वरीय अनुभूति की और इस आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाया। अपनी कुशाग्र व मेघावी बुद्धि से आपने बीई की पढ़ाई ऑनर से उत्तीर्ण किया हुआ है। उसके बाद आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित किया हुआ है। देश के अनेक स्थानों में अनेकों की ज्योति जगाने के लिए परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, जिसे अनेक ऑर्गेनाइजेशंस, आईआईटी, खादलपुर, डीआरडीओ, दिल्ली, हीरो होंडा ग्रुप, चितरंजन, लोकोमोटिव एसेट्रा, कई ऐसे और भी स्थानों पर आपने अपने वाणी के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया है। हाल ही में आपको डॉक्टर आंबेडकर ज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपकी वाणी ही स्वयं आपका परिचय है और आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिनको कहे कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कुछ ऐसे उदाहरणों से ऐसे स्पष्ट करें कि हर एक अपने जीवन में वो अनुभव करे कि ये हमारी अपनी लाइफ है। तो ऐसे कहूंगी, लाइफ इज जर्नी। लाइफ के लिए कहा जाता है कि लाइफ इज जर्नी, पर इस लाइफ को हम कैसे तय करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो वो प्राची बेन हमें स्पष्ट करेगी। राजयोग शिक्षिका प्राची बेन जी,
बहुत सुंदर विषय आज का है, लिविंग इन फॉरगिवनेस। विषय स्पष्ट है सबको? विषय का शीर्षक स्पष्ट है सबको? हाथ उठाइए। स्पष्ट है? लिविंग इन फॉरगिवनेस, क्षमावान होकर जीना। जब मुझे ये विषय दिया गया और जब आज की तारीख मैंने देखी तो मुझे ईश्वर की रची हुई विचित्र ये ड्रामा की सुंदरता नजर आई। आज आप सभी ईश्वर के घर में मौजूद हैं और आपको पता है ये कौन सा सप्ताह चल रहा है? ये पर्युषण पर्व चल रहा है। कल से ही प्रारंभ हुआ है, 8 दिन चलेगा और कल से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये एक वीर का आभूषण है। कहते हैं क्षमा मांगना और क्षमा करना कमजोरों का काम नहीं है, कायरों का काम नहीं है, उसके लिए शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ये पहचान है, जितना वो क्षमाशील है तभी वह आध्यात्मिक है। आज आप सभी इस आध्यात्मिक परिसर में कुछ दिनों से वास कर रहे हैं और कुछ दिन रहेंगे। हम महसूस कर रहे कि ये आध्यात्मिकता किस प्रकार हमारे जीवन में वरदान है, कितना हमें एक सुकून, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत शीतलता का अनुभव करा रही है, करा रही है, करा रही है। तो अगर हम ऐसा ही एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्षमा। क्यों चाहिए क्षमा? क्यों मांगू क्षमा? क्यों चाहिए ये क्षमा और क्यों मांगू मैं क्षमा? सारे दिन में अगर हम देखें, जब से हमने जन्म लिया तब से कर्म क्षेत्र में कर्म करते आ रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। सुबह से उठकर रात तक हमारा हर प्रकार का कार्य, चाहे हम सोचकर, बोलकर, हाथों से, हर प्रकार से हम कर्म कर रहे, क्या सही क्या गलत पता नहीं है, करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करते करते जीवन बिताते आ रहे हैं। चलते फिरते हरेक के साथ जो मिलता है अपने व्यवहार कर रहे हैं। कौन सा व्यवहार सही था, कौन सा व्यवहार गलत था? ये मुख भगवान ने हमें दिया है, सारा दिन कितना चलता है ना, कितना चलता है। शायद जब सोते हैं तब थोड़ी देर शांत होता है, इतना बोलते हैं, क्या सही बोल रहे और क्या गलत बोल रहे। कई बार वो बोल जाते हैं जो बोलना नहीं चाहिए और बोलते बोलते कई बार अपने को सिद्ध भी करने लग जाते हैं कि जो मैंने बोला वो क्या था, राइट था। सिद्ध वही किया जाता है जो रॉन्ग था, राइट को तो सिद्ध नहीं किया जाता। कई बार हम देखते हैं जो बड़े हैं घर के वो कहते हैं, क्या हो गया बोल दिया तो, क्या हो गया कर दिया तो, मैं बड़ा हूं, मुझे सजा देने वाला, मुझे रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, मैं कर सकता हूं। परिणाम, परिणाम क्या है? परिणाम करते समय हमें पता नहीं लगता, लेकिन लेकिन जब उसका मिलता है ना, तब भगवान से कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। हम सब एक कर्म क्षेत्र में रह रहे हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या घर या समाज, हर जगह कार्य करने की एक नियम आवली निर्धारित है। अगर उस नियम के विरुद्ध अयथार्थ कर्म करते हैं तो उसका दंड भी निर्धारित है। हम सब ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इस कर्म क्षेत्र में हैं। घर आपने बनाया, समाज आपने बनाया, उसमें नियम बनाए, तो क्या भगवान ने ये कर्म क्षेत्र बनाया कोई नियम नहीं बनाया क्या? उसे विधाता कहते हैं। विधान बनाए हैं उसने। हरेक कर्म जो हम कर रहे हैं अगर अयथार्थ कर्म है तो उसका भी दंड निर्धारित है। दंड किसे कहते हैं? सजा। सजा अर्थात जो मुझे अच्छा नहीं लगता पर वो मुझे भोगना पड़ता है, जो मैं नहीं चाहती, जो मुझे पसंद नहीं है पर वो बार बार मेरे सामने, मुझे दंड के रूप में मेरे सामने आता है। और शायद आज जो हम जी रहे हैं ना, हर पल ऐसी ही बातों का सामना कर रहे हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो मुझे पसंद नहीं, जो मेरे इच्छा के विपरीत है। ये सब पूर्व के किए हुए कर्म का फल, दंड या सजा के रूप में मेरे सामने तो नहीं आ रही? आ रही है ना? और यूं ही मैं कर्म करते चलूं और फिर कई बार हम उसका जस्टिफिकेशन भी देते हैं। कई बार हम कह देते इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, ये मुझे बहुत दुख देता है। जो कुछ भी पुरानी स्मृतियां हैं किसी के बुरे किए हुए व्यवहार की, उन स्मृतियों को अपने अंदर रखते हुए हम कई ऐसी बातें सोच कर लेते हैं, बोल देते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं कि उसने ऐसा किया था ना, इसलिए मेरा व्यवहार ऐसा हो जाता है। उसके कर्म उसके साथ है और जो मैंने आज किया उसके कर्म किसके साथ? मेरे साथ ही तो है। उस कर्म का जो भी निर्धारित फल होगा वो आखिर मुझे ही तो भोगना होगा, चाहे मैंने किसी के भी कारण किया हो। जरा आज इस सुंदर आध्यात्मिक माहौल में बैठकर चिंतन करो। शायद ये अवसर ईश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि जब भी कुछ हमसे हो जाता है गलत तो माफी हमें एक ईश्वर के सामने ही जाकर मांगते हैं। और आज इस सुंदर पर्व के दौरान हम स्वयं ईश्वर के घर में मौजूद हैं। शायद ये अवसर ईश्वर ने दिया है जो मेरे सारे पास्ट के किए हुए कर्म का मैं क्षमा, उसकी माफी ले सकूं और भविष्य में हल्के होकर, मुक्त होकर, फ्री होकर इन बुराइयों से हम एक खुशनुमा जिंदगी जी सकें कुछ पल के लिए। सबसे अनुरोध है जरा अपने जीवन यात्रा में चले। एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, उस गीत के साथ हम सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने जीवन यात्रा में अपनी कर्म कहानी को देखें, अपनी कर्म कहानी को देखें।
दर्पण में हो देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले सानी जरा दर्पण में। कर्म कहानी कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले सानी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी।
निश्चित जीवन के सफर में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब ईश्वरीय प्रेरणा से हमें ये रियलाइज होता है कि जो मैं कर रहा हूं सही नहीं है। फिर कई बार जो पाप कर चुके कहते हैं जो तीर निकल गया सो निकल गया। दुनिया में सब कुछ नष्ट किया जा सकता है, अपना घर अपनी गाड़ी अपना मकान अपने वस्तुएं यहां तक कि व्यक्ति अपने जीवन को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन कहा जाता है कि जो पाप कर लिया उसे नष्ट नहीं कर पाएंगे, उसे भोगना ही पड़ेगा। कई बार व्यक्ति जब इसे रियलाइज करता है तो पाप धोने के लिए स्नान करने गंगा में चला जाता है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जब नहाकर गंगा में मैं सब पाप धो आया, नहाकर गंगा में मैं सब पाप धो आया और फिर साथ में सबके धुले हुए पापों का पानी भर लाया और फिर साथ में सबके धुले हुए पापों का पानी भर लाया, वाह रे इंसान तेरा ये तरीका समझ ना आया, वाह रे इंसान तेरा ये तरीका समझ ना आया, पाप तो तेरे सोच से हुआ था शरीर से नहीं, शरीर को तो पानी में साफ कराया पर क्या सोच को साफ किए बिना तेरे पाप धुल जाएंगे, वाह रे इंसान तेरा तरीका समझ ना आया। कहने का भाव आवश्यकता है सोच से ही उस पाप की जड़ यानी उस बुराई को खत्म कर देने की आवश्यकता है, तभी सही मायने में वो प्रायश्चित कहलाता है। कई फिर कहते हैं क्या भगवान से क्षमा मांग लेने से उसका दंड खत्म हो जाएगा? ईश्वर ने कहा आधा माफ कर दूंगा, दिल से तुम मुझे कह देते हो क्षमा ले लेते हो, आधा माफ कर देता हूं। आधा माफ कर देना मना, जो कर्म किया है उसका परिणाम तो मेरे सामने आएगा ही, लेकिन जो मैंने क्षमा मांगी अर्थात मैंने उस गलती को दिल से रियलाइज किया, स्वीकार किया और फिर रियलाइज करके अपने को परिवर्तन करने का अर्थात दोबारा वो गलती न करने का अंदर से दृढ़ता से संकल्प लिया, तो ईश्वर की उस संकल्प में शक्ति भर जाती है और हम आत्माओं को ईश्वर की एक्स्ट्रा दुआएं मिल जाती है, जो दुआएं ही हमें उस कर्म के आए हुए परिणाम को सामना करने में मदद करते। उस कर्म का परिणाम तो सामने आएगा ही, लेकिन क्षमा मांगना अर्थात हे ईश्वर मेरी गलती चितना धरो, अर्थात वो गलती मैंने स्वीकार कर ली, अब दोबारा न करने का प्रण करता हूँ, हे ईश्वर मेरी गलती आप चित ना धरो, तो उससे परमात्मा से जो पॉजिटिव तरंगे जो दुआएं हमें मिलती है वो मुझ आत्मा के लिए शक्ति बन जाती है। ठीक यही कार्य जो हम परमात्मा के साथ करते हैं मुझे करना है दूसरे व्यक्तियों के साथ जिनके साथ मैंने गलत व्यवहार किया है। अगर मैं उनसे दिल से क्षमा मांग लेती हूँ भले वो मुझे क्षमा करे या ना करे, ध्यान देंगे मैंने दिल से उनसे क्षमा मांग ली फिर भले वो मुझे क्षमा करे या ना करे ये उनके ऊपर है, लेकिन अगर मैंने दिल से क्षमा मांग ली अर्थात मैंने स्वीकार करके अपने को परिवर्तन करने का संकल्प कर लिया तो मेरे अंदर से वो जो गिल्ट अपराध बोध का जो एक बंधन है उससे हम छूट जाएंगे। साथ साथ ईश्वर की उस पिता की दुआएं मुझे मिल जाएंगी। क्यों मिलेंगी दुआएं, समझिएगा, क्यों मिलेंगी ईश्वर की दुआएं? आपने गलती की माफी मांगी है किसी व्यक्ति से, दुआएं मिलेंगी आपको ईश्वर से। क्यों मिलेंगी ईश्वर से? अब देखिए, जब मैं ईश्वर से माफी मांग रही थी तब मैंने ईश्वर का तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। आमतौर पे कहते हैं माफी उससे मांगो जिसके लिए आपने गलत किया है, जिसके साथ आपने गलत किया है उससे ही तो माफी मांगेंगे ना। मैंने गलत किया इनके साथ, माफी मांगू उनसे, ये तो समझ में नहीं आता। पर इस संसार में रहकर मैं हर पल गलत कर रहा था और माफी मांग रहा था ईश्वर से। मैंने ईश्वर का तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, बिगाड़ा था? मैंने ईश्वर का कुछ बिगाड़ा था? कौन कौन कहते हैं नहीं? अरे अभी तो सिर हिला रहे थे, हाथ उठाए उठाए। कौन कौन कहता है मैंने ईश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ा? अरे डर रहे हैं। अच्छा कौन कौन कहते हैं मैंने ईश्वर का बिगाड़ा? अच्छा बाकी क्या कहते हैं? देखिए, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हम रह रहे हैं। उसने बहुत सुंदर दुनिया रची थी, उसने मुझे भी यहाँ पर एक श्रेष्ठ कार्य अर्थ भेजा था, कुछ प्रयोजन के साथ भेजा था, और मैं वो छोड़कर क्या कर रही थी? गलत में उलझी हुई थी, उसकी बनाई हुई दुनिया को भी उजाड़ रही थी, तो उसका बिगाड़ रही थी ना। अब मैं अगर किसी व्यक्ति के साथ मैंने गलत व्यवहार किया और मैंने अगर बहुत दिल से उससे क्षमा मांग ली, भले वो क्षमा करे ना करे, लेकिन मुझे ईश्वर से दुआएं मिल जाएंगी, क्योंकि ईश्वर की कहते मैंने तुम्हें जिस कार्य अर्थ भेजा था, मैंने तुम्हें जिस दुनिया की संभालने के लिए भेजा था, वो दुनिया तुम ठीक संभालोगे, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, उसकी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मुझे मिलने लग जाएंगी, और यही ब्लेसिंग्स हमें उस अपराध बोध के बंधन से मुक्त कर देती है और हम एक बहुत सुंदर जीवन शुरू कर सकते हैं। इसीलिए जिन जिन से भी मैंने जाने अनजाने कुछ गलत किया है, कई बार आप देखेंगे उन व्यक्तियों के साथ मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, हम सोचते हैं मैंने इनके साथ तो कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे हरेक के जीवन में, हरेक के सर्कल में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत अधिक टकराहट होती है। न चाहते भी हम चाहेंगे अच्छा करना उनके साथ, लेकिन फिर भी बार बार होता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस जन्म में तो नहीं, लेकिन मुझ आत्मा ने कभी न कभी किन्हीं जन्मों में किसी और शरीर में बैठकर उनके साथ कुछ किया है जिसका दंड स्वरूप अवांछित चीजें उनसे मेरे सामने आती। इसलिए आज हम अभी शाम को 15 मिनट बैठेंगे, एक एक से दिल से क्षमा मांग लेंगे, वहीं पर उनके साथ के हर बंधन खत्म हो जाएंगे, दिल से क्षमा मांग लेंगे। ये तो हुआ क्षमा मांगने की बात, अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट में, क्षमा करने की बात। क्योंकि कई बार हमारे द्वारा की हुई हर गलती हमें छोटी लगती है और दूसरों के द्वारा की हुई हमारे साथ हर छोटी गलती भी हमें बड़ी लगती है। और जब दूसरों का व्यवहार हमें चोट पहुंचाता है, चाहे वो छोटी सी भी कोई ऐसी गलती क्यों ना हो, वो मुझे बहुत भारी लगती है। वो भले मुझसे माफी भी मांग ले, पर कई बार हम कहते हैं तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मैं तुम्हें क्षमा कभी नहीं कर सकती। होता है? अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं, ठीक है आप क्षमा नहीं कर सकते, उससे नुकसान किसको है? जिसने गलती किया, अगर उसने रियलाइज करके उसे चेंज कर लिया, वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, ईश्वर से भी दुआएं कमाकर आगे बढ़ता चला जाता है। और अगर उसने रियलाइज नहीं भी किया तो भी उस कर्म का परिणाम उसके सामने आते, उसको भी वो फेस करके आगे बढ़ जाता है। और हम उसके उसी बात के कारण उसके प्रति नफरत की भावना पालकर अंदर बैठे होते हैं। क्षमा का अर्थ क्या होता है? अगर आप क्षमा के अर्थ को समझ जाए ना, तो निश्चित सहज क्षमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा और जीवन में आप बहुत बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम देखें तो यही पुरानी बातें हैं जो हम अपने अंदर पकड़ पकड़ के रखते हैं। कभी की पुरानी लगी हुई चोट, हम बार बार उसको दोहराते हुए उस चोट के घाव को पुनः जागृत कर देते हैं। सालों साल वो चोट हील नहीं होता है। और इसीलिए फिर क्या होता है कि छोटी छोटी बात, कोई किसी ने कुछ कह दिया, हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, हम बार बार उसको रिएक्ट करने लगते हैं। फिर सोचते हैं बात तो बड़ी छोटी थी, मैं इतना रिएक्ट क्यों करने लगा हूं। रिएक्ट उस छोटी बात से नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे उस पुराने जख्म के कारण। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे घुटने में, पैर के घुटने में अगर पुरानी चोट लगी है और उसको मैंने ठीक नहीं किया है, हील नहीं किया है, तो एक हल्का सा उसमें कपड़ा भी टकराएगा ना, तो मुझे टीस होगी, दर्द होगा। उस कपड़े की गलती नहीं थी, गलती थी उस पुराने चोट पर मैंने आज तक मलहम ही नहीं लगाया था, उसे ठीक करने का प्रयास ही नहीं किया है, उसे ठीक ही नहीं किया है। और वास्तव में यही जो पुराने जख्म हम लेकर चल रहे हैं अपने अंदर, ये हमारे जीवन में ऐसे हैं जैसे जीवन यात्रा में आप गाड़ी तो अपनी आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन ब्रेक लगा के, किसी ने ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाई है? किसी ने चलाई है? हाथ उठाइए। सब चला रहे हैं अपनी इस जीवन की गाड़ी, सब ब्रेक लगाकर ही चला रहे हैं। पुरानी बातों को पकड़कर जो हम चलते हैं तो बहुत फ्रिक्शन अंदर पैदा होता है। जैसे आप ब्रेक दबाएंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो टायर जो है ना वो रोड से घसीटाता है और उसमें उसको वो खराब भी करता है और उसके फ्रिक्शन से हीट भी पैदा होती है। ठीक यही चीज हम अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, जीवन आगे बढ़ नहीं रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। हम तो शायद वहीं के वहीं हैं, या कई बार हम अनुभव करते हैं हम पीछे जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण, अगर मैं इन पुराने जख्मों को हील कर दूं ना, पुरानी बातों को छोड़ दूं ना, तो एक मुक्त गगन में पंछी की तरह स्वतंत्र जीवन का आनंद ले सकते हैं। और तो और, यही जो पुरानी बातें हम अपने अंदर लेकर रखते हैं, यही हमारे अंदर मेडिकल साइंस कहता है टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं, जो आज आधे से अधिक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। करना क्या है आपको, करना क्या है? सब बातों से छूट जाएंगे, क्षमा कर दूं। क्षमा का अर्थ है, अब ध्यान से क्षमा के अर्थ को समझिएगा, क्षमा का अर्थ है किसी के प्रति नफरत को छोड़ देने का मेरा अपना सचेत अवस्था में लिया गया निर्णय। फिर से रिपीट कर रही हूं, किसी के प्रति नफरत को छोड़ देने का मेरा अपना सचेत अवस्था में लिया गया निर्णय, ये क्षमा है। आप क्षमा करें ना करें, वो तो आगे बढ़ रहा है, आपकी क्षमा की उसको जरूरत नहीं है। वास्तव में क्षमा हम दूसरों को नहीं करते हैं, क्षमा रहम हम अपने को करते हैं, अपने ऊपर करते हैं, अपने अंदर से उस नफरत को छोड़ देना, ये निर्णय आपका है। सचेत अवस्था में जागरूक होकर अपना निर्णय ले लीजिए, मुझे ये नफरत की भावना उसके प्रति छोड़ देनी है, क्योंकि मुझे समझ है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरे अपने लिखे हुए कर्म कहानी के अनुसार हुआ है, उसमें कोई ना कोई अनजाने में मेरे साथ वाले कारण बन जाते हैं, दोषी वो है ही नहीं। इसलिए कई बार कहा जाता है किसी की घटना में अगर मृत्यु भी हो गई तो आप सब खुद कहते हैं कि वो उसका निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर वो चीज होनी लिखी थी, कारण कुछ भी बन जाता है। आज श्री रामचंद्र जी को चार भाइयों में से वो एक भाई जिन्हें वनवास मिला, चार भाइयों में से वो एक भाई जिसे वनवास मिला, बाकी लक्ष्मण जी तो स्वेच्छा से साथ में चले गए, पर वनवास मिला उन एक को। 14 साल जब वनवास झेल कर वापस लौटे तो सबसे पहले जाकर कैकई माँ को प्रणाम किया। कैकई माँ अंदर से बहुत विचलित, अपराध बोध के कारण अंदर से विचलित होते कही कि नहीं तुम मेरे पैर न छुओ, मैं तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनके पैर छूकर कहे, हे माँ, आप ही ने तो मुझे राम से भगवान राम बनाया है, अगर जो कुछ मेरे साथ हुआ भी है तो क्या हुआ, जीवन का नाम है सीखना, उसमें सीखना ही तो था, उसमें अपनी शक्ति बढ़ानी ही तो थी, और मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वही शक्ति मेरे काम आनी थी, इसीलिए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मेरा नुकसान हुआ ही नहीं। जीवन परिवर्तन का ही नाम है, जीवन बढ़ने का ही नाम है। जो कुछ हो रहा है मुझे सिखाने के लिए ही तो हो रहा है, मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए ही तो हो रहा है। आज तक अगर ये बातें नहीं होती तो मेरी शक्ति बढ़ती कैसे? कहीं पर भी रामायण में ये वर्णन भी नहीं आता कि श्री रामचंद्र जी ने कैकई को माफ किया। माफी शब्द ही नहीं होती। जो हुआ है उससे मेरी शक्ति ही बड़ी है, मुझे सीख ही मिली है, मुझे समझ ही विकसित मेरी समझ ही विकसित हुई है। इसीलिए मुझे अपने अंदर से उस नफरत के भाव को हमेशा के लिए छोड़ देना है। कौन कौन आज ये निर्णय करते हैं? खुद के सचेत अवस्था में। उठाइए उठाइए, हाथ उठाइए, बहुत अच्छे। साथ साथ आज मेरा अपना कुछ किया हुआ मेरे साथ व्यवहार या मेरा छोटा बड़ा नुकसान, लेकिन मेरे आपसी संबंध, मेरा वो प्रेम, वो मेरे लिए ज्यादा आवश्यक है। वो नुकसान तो नुकसान था भी नहीं, और जो हुआ भी वो कोई मेरे स्वार्थ के कारण मैं उसको पकड़ के रखूं और मेरा इतना सुंदर ये संबंध, वो मेरे लिए ज्यादा कीमती है। मुझ आत्मा के लिए प्रेम, शांति, खुशी वो ज्यादा कीमती है। हाँ, पास्ट नहीं बदलेगा लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रेजेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। छोड़ दीजिए, नफरत को छोड़ दीजिए, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। चलिए अभी कुछ पल के लिए, 5 मिनट हम ये अभ्यास करेंगे। बहुत दृढ़ता पूर्वक अपने साथ एकाग्र होकर बैठ जाऊं। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है सारे जीवन काल का। ईश्वर के घर में बैठकर संपूर्ण अपनी पास्ट के किए हुए कर्मों की क्षमा ले लेना और क्षमा कर देना। देखूं, मैंने अपने जीवन यात्रा में अनेकानेक पल पल कितने ना जाने अनजाने विक्रम किए हैं, गलत किया है। जिसने मेरी शांति, मेरे अंदर के प्रेम, मेरे अंदर की खुशी को गायब किया है, बचपन से लेकर अब तक कभी अपने बड़ों के साथ, कभी अपने साथियों के साथ, कभी अपने छोटों के साथ दिल से, हे ईश्वर, दिल से आज मैं माफी मांगता हूं। Thank you. समझ कर भी ना समझी से भी मैंने बहुत कुछ किया है। जन्म में या पूर्व जन्मों में
मेरे गुनाह माफ कर, मेरा जमीर साफ कर, मेरे गुनाह माफ कर, मेरा जमीर साफ कर, मेरे यसू मेरे खुदा ओ मेरे परमात्मा।
मैं सिर्फ परमात्मा को देख रहा हूँ, दूर गगन में
देखे जो उसने जिंदगी ऐसी मुझे निकाह दे, आया हूँ शर्मसार मैं अब तो मुझे बना दे, अब तो मुझे बना दे, मेरे गुनाह माफ कर, मेरा जमीर साफ कर, मेरे यसू मेरे खुदा ओ मेरे परमात्मा।
अब मैं अपने उन एक एक आत्माओं को स्वरूप में देखूं जिनके साथ किया हुआ गलत व्यवहार मुझे याद है। हे ईश्वर पिता, उन आत्माओं को अपने सम्मुख देखते हुए उनसे भी मैं दिल से माफी मांगू, चाहे मैंने इस जन्म में चाहे पूर्व जन्मों में भी मैंने जरूर आपके साथ कुछ ऐसे किए हैं कर्म जिसके कारण ही मुझे ये रिटर्न हो रहे हैं। आज सच्चे दिल से दिल की गहराई से मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी पुरानी गलतियां सब माफ कर दे और मैं भी आपके द्वारा किए हुए जाने अनजाने हर गलतियों को दिल से माफ करता, दिल से माफ करता और महसूस करे कि आपके मस्तक के बीचों बीच से ईश्वर की उस श्रेष्ठ संतान चमकती हुई आप आत्मा से उन आत्माओं के लिए बहुत शुद्ध श्रेष्ठ शुभ भावनाएं तरंगों के माफिक प्रवाहित हो रही है कि कि आप सब भी बहुत अच्छे बन जाओ, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। वो तरंगे सुनहरी सफेद चमकीली तरंगे उन आत्माओं तक भी पहुंच रही है और वो उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ओम शांति।
प्राची बहन ने बहुत ही विस्तार से विषय को स्पष्ट किया। किसी की बुरी बातों को, बुरे व्यवहार को दिल में रखने से कभी भी हम किसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी सोच को बदलेंगे, हम अपने व्यवहार को बदलेंगे, तभी हम दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। समय की बहुत सीमा है, इसलिए आज के विषय को आगे ले जाते हुए आज के हमारे चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड मिस्टर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग हमारे बीच में हैं। मैं उनका संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। रिस्पेक्टेड मिस्टर नंद किशोर गर्ग हैज पॉलिटिकल एंड सोशल कैरियर। ही हैज ए नोबल सोशल वर्कर एंड हैज मैनी नोबल डीड्स अटैच टू हिज नेम। He held prominent positions in renowned organizations such as Chancellor of Maharaj Agarsen University, Founder Chairman of Maharaja Agarsen Institute of Technology, Founder Chairman of Maharaja Agarsen Institute of Management Studies, Founder Chairman of Maharaja Agarsen University, Baddi, हिमाचल प्रदेश, फाउंडर एंड चीफ पेट्रॉन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाब, पंजाबी बांग एट न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी मुखर्जी न्यास, वाइस चेयरमैन महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज एट हरियाणा, वाइस प्रेसिडेंट हिंदू शिक्षा समिति दिल्ली प्रदेश, एक्स चेयरमैन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड दीनदयाल उपाध्याय। सो वी आर वेटिंग टू लिसन योर डायमंड वर्ड्स रिस्पेक्टेड मिस्टर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी। ज्यादा टाइम तो नहीं है, फिर भी आप 10 मिनट।
आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि दिव्य आत्माओं के बीच में आज इस प्रांगण में, जिसमें निमंत्रण मेरे पास 25 वर्ष पूर्व से था, परंतु आज आशीष मिला आप सबका, रजनी बहन जी का, कि मैं आज आपके बीच में हूं। जो विषय प्राची बहन जी ने काफी विस्तार से हमें समझाया, बहुत ही गूढ़ विषय है, कॉम्प्लेक्स विषय है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, माफ करना भी और माफी मांगना भी, परंतु दोनों आवश्यक हैं। जब तक हम स्लेट को साफ नहीं करेंगे, जब तक इरेज नहीं करेंगे, आज के यदि हम अपने मोबाइल फोन वगैरह में भी देखें तो उसके अंदर गंद इकट्ठा कितना हो जाता है, ऐसे हमारे मन और मस्तिष्क पर भी रोजाना के हमारे संबंधों के कारण बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। और अभी तीन पैरेलल सेशन जो इससे पूर्व चले, उसमें भी क्या था, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशन, उसमें भी बहुत आवश्यक है। रिलेशन के मैनेजमेंट में भी यदि हम क्षमा करना हमें ना आता हो तो रिलेशन मेंटेन नहीं हो सकते। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ भी उसके बिना संभव नहीं। यदि हम क्रोधी स्वभाव रहेगा, माफ नहीं करेंगे तो टेंशन में स्वयं भी रहेंगे, दूसरे को भी रखेंगे। और इसी प्रकार से इस सारी व्यवस्थाएं सबसे पहले क्षमा करना में आना ही चाहिए। और जिस प्रकार से बहन जी दर्शिता बता रही थी, वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषण, वीरों का भूषण है, आभूषण है, परंतु वीर होना और क्षमाशील होना दोनों में कई बार बड़ा सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल बात है। यदि हम सबल हो जाते हैं, बहुत पद पैसा प्रतिष्ठा आ जाती है, तो अहम भाव आना एक स्वाभाविक मानव प्रक्रिया है। और जब अहम भाव आ जाएगा, बड़ापन आ जाएगा, तो क्षमा करना धीरे धीरे हमें कम हो जाता है। परंतु ये सारी चीजें हमारे उदाहरणों से भी यदि हम देखें, तो एक उदाहरण मैं भी रामायण से देना चाहूंगा। सबको पता है कि बालिका वध राम ने किया था, और यदि बहुत अल्ट्रा मॉडर्न होके कहें तो गलत ढंग से किया था, परंतु वो आवश्यक था। बाली को क्षमा किया और अपने धाम में भेजा। इससे अगली चीज पे यदि हम ध्यान देते नहीं है कि अंगद एक बहुत ही पोटेंशियल, उनका सुपुत्र बहुत वीर है, और यदि उसके मन में ये भावना लगी रहे कि मेरे चाचा के कारण, राम के कारण मेरे पिता का वध हुआ है, तो वो भगवान राम के साथ नहीं आता और सुग्रीव के साथ भी नहीं आता, तो शायद लंका विजय के अंदर बहुत मुश्किल आती। तो क्षमा भगवान ने तो किया, अंगद ने भी अपने आप को समन्वय बिठाया परिस्थितियों से, और अपने आप को इतने मन से युद्ध लड़ा कि लंका में जाकर रावण के दरबार में इतना बड़ा बात कह दी, यदि मेरे टांग को, मेरे पैर को कोई हटा देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। तो इससे कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है हमारे सारी परंपराओं में। जैसे कैकई को शब्दों से माफी मांगना कोई आवश्यक नहीं, भाव से भी, यदि आज मेरे से गलती हो गई और अगले दिन मैं आपसे मिला और मुस्कुरा के मिला और थोड़ा सा झुका के मिला, तो आप निश्चित तौर पर मुझे माफ कर दें, क्योंकि कम्युनिकेशन कई ढंग से हो सकता है। रेकी जैसे होती है, उसी प्रकार से हमारे भाव भी एक दूसरे के प्रति पहुंचते हैं। और इसीलिए संत लोग कहते हैं कि रात को सोने से पहले यदि हम अपनी स्लेट साफ कर लेंगे कि आज मेरे से दिन में किस किस से मेरी गलती हुई, और गलती में किस में गलती के कारण किसी के मन को कष्ट हुआ, अच्छा तो यही है कि हम तुरंत उसको फोन करके कह दें कि आज भाई मेरा मूड ठीक नहीं था और मेरे से गलती हो गई, तो मैं समझता हूँ आपको भी नींद अच्छी आएगी, उसको भी नींद अच्छी आएगी। अब ये सारी हमारी हेल्थ का मैनेजमेंट में अपने आप ही इसका एक बड़ी चीज आ जाएगी। अब क्षमा भी कितनी बार करना चाहिए, सीमाएं है या नहीं है? शिशुपाल के प्रकरण में भगवान कृष्ण ने 99 बार क्षमा किया, परंतु पहले बोल दिया था कि अब 100 के बाद नहीं करूंगा, और नहीं किया। परंतु पृथ्वीराज चौहान से गलती हुई, और वो गलती इतिहास में ऐसी हुई कि हमें 1100 साल बार बार गौरी को माफ करना, मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ कर देना, और 17वीं बार पराजित होकर अपनी आंखें भी फुड़वा देना, और इस देश से ऐसी व्यवस्था समाप्त हो गई जिस व्यवस्था के अंदर यदि हम आज रहते, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे अंदर जो कमियां आ गई 1100 साल में, स्वयं पर से विश्वास हमारा उठ गया। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते इसलिए व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं करते इसलिए हम और हमारा राष्ट्र, हमारा समाज कमजोर होता चला जा रहा है। और इन परिस्थितियों से निकलने का एक ही मैं समझता हूँ उपाय है कि हम अपने उतना ही कहें, उतना ही किसी को कहें जो हमें भी अच्छा लगे। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो काम मैं दूसरे के प्रति ना करूं, तो धीरे धीरे हमारे शून्यत के अंदर हम जाते चले जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे, और शून्य से ही फिर शिखर पर हम जा सकते हैं। जितना हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, इंटरनल को, मानसिक ताकत को, उतना ही क्षमा करने की हमारा अभ्यास बढ़ सकता है। और क्षमा करने का अभ्यास बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम वीर भी होंगे, हम धीर भी होंगे, और हम एक अच्छे मानव बनकर, जो एक ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पिछले 80-82 साल से जिस कार्य में लगा हुआ है, और एक बहुत ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सब इससे जुड़े हुए हैं, और मैं भी समझता हूँ कि मेरे को देरी अवश्य हुई, 25 साल लग गए मुझे दिल्ली से पंजाबी बाग से आते आते यहाँ, हर साल कोशिश करने के बावजूद, परंतु मुझे लगता है कि एक बहुत ही श्रेष्ठ लोग आप लोग हैं, और जहाँ श्रेष्ठ लोग हों वहाँ वाइब्रेशन भी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप होंगी, और जितना पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, जितनी नकारात्मक शक्ति अपने आप कम होती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली नहीं है, जितना जितना पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी नेगेटिविटी घटेगी, और जितनी वो घटेगी उतना ही हम सामान्य होकर जी सकें। सहज सरल निर्मल भाव ही भगवान को भी पसंद है, यही उन्होंने बार बार कहा था, और वही हमें बनने की कोशिश करना है, वही हमें यहाँ सीखने और सिखाने का अवसर मिलता है। हमारी प्राची बहन जी भी और दर्शिता बहन जी यही बात हमारे को सेशन में कहने का प्रयास किया है, ये प्रयास सफल हो, हमें भगवान इतनी सद्बुद्धि और साहस दे, सामर्थ्य दे कि हम जो कुछ सोच रहे हैं वो अच्छा सोचें, और अच्छा सोचेंगे और अच्छा करें तो निश्चित तौर पर यही स्वर्ग होगा, यही फिर से जो हम कहते हैं कि काल रिपीट होता रहता है, तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, ऐसी मान्यता है, और इसी मान्यता को आगे बढ़ाने में हम सफल हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा, समय की सीमा होते हुए भी आपने अपने शब्दों में, शॉर्ट में कहूँ तो ऐसा कह दिया कि आप फूल बांटते जाइए, खुशबू तो अपने आप अपने हाथों से आ जाएगी, आप क्षमा करते जाइए तो अपने जीवन में आप उसका अनुभव, क्योंकि क्षमा दूसरों को करना स्वयं क्षमा पाना हो जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए हमारी दीदी जी आई हुई है, तो हम इसको समाप्ति की ओर ले जाते हुए 2 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। स्वयं को एक चैतन्य शक्ति भ्रुकुटी के बीच में चमकती आत्मा समझकर बैठे, सारे विचारों को कुछ क्षण के लिए समेट ले, स्वयं को भरपूर समझे, आज तक किसी से कैसा भी व्यवहार मिला उन सबको क्षमा करते हुए अपने मन को शांत स्थिति में स्थित करें, अपने विचारों को ध्यान से देखें, मैं अति सूक्ष्म ज्योति हूँ जो भ्रुकुटी के मध्य में बैठ शरीर का संचालन करती हूँ। मेरी सकारात्मक सोच मुझे और ये समाज को एक सुंदर विश्व बनाने के लिए पर्याप्त है। ओम शांति।
Thank you.